نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورة البقرة آیت نمبر 282 اور 283 کریں گے. ایک ہی موضوع پہ ہیں دونوں آیات، اور آج ہم وہ آیت سیکھنے جا رہے ہیں جو قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، سب سے لانگ لینتھی ہے. میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ بتایا تھا کہ بعض لوگ آیت الکرسی کو سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے لمبی آیت ہے، حالانکہ وہ سب سے لمبی آیت نہیں، وہ سب سے عظیم آیت ہے قرآن کریم کی. سب سے لمبی جو آیت ہے قرآن پاک کی وہ ہے یہ آیت، آیت نمبر 282، جس کو کہتے ہیں آیت دین. دین جیسے ابھی ہم نے پڑھا، بی دین الی اجل مسمی، قرض، قرض کے بارے میں آیت جو ہے وہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے. اچھا، بعض لوگوں کو شاید یہ ہو کہ ہم یہ آیت کیوں سیکھیں، ہم نے تو نہ قرضہ دینا نہ قرضہ لینا نہ کچھ ہے. تو بات یہ ہے کہ جو احکامات، جو باتیں بھی قرآن کریم میں آئی ہیں، ان کو سیکھنا، ان کو سمجھنا، اس کے اوپر ہمارے لیے اجر بھی ہے اور دنیا اور آخرت کا فائدہ بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے. آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں، بعض دفعہ ہمارے پاس یہاں پہ کالز آتی ہیں یا میل میں لیٹر آتے ہیں کہ آپ آئیے ہمارے پاس اور یہ پریزنٹیشن آپ دیکھیں، 4 گھنٹے کی یا 5 گھنٹے کی ہے، آپ اگر یہ پریزنٹیشن ہماری دیکھیں گے تو ہم اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں ہے، ہم آپ کو فلاں فلاں جگہ کے ٹکٹ بھی دیں گے اور یہ بھی دیں گے وہ بھی دیں گے، آپ کا ہمیں صرف وقت چاہیے، آپ آئیں اور یہ بس ہماری یہ جو بھی ان کو اپنے اشتہار ہوتا ہے ان کے پروڈکٹ یا جو بھی چیز بیچنا چاہتے ہیں. تو ہم اس لالچ میں دور دور کے سفر بھی کرتے ہیں اور جا کے اپنا وقت لگاتے ہیں، کوئی ویکینڈ پہ جا کے بیٹھتا ہے کہ چلو ٹکٹ مل جائے گا مفت کا. بعض لوگوں نے شاید اس چیز کو اویل بھی کیا ہو کبھی. آپ یہ دیکھیں، حالانکہ چاہے آپ نے وہ چیز نہیں لینی ہوتی، ان کس لالچ میں جاتے ہیں اس کے ریوارڈ کے. یہ تو قرآن کریم ہے، کوئی بھی اس وجہ سے کسی آیت کو غیر اہم سمجھ کے، یا ہم نے تو اس کے اوپر کون سا عمل کرنا ہے، یا ہم نے تو اس کی ضرورت کبھی ہمیں محسوس نہیں ہوگی زندگی میں، تو ہم کیوں اس کو سیکھیں، یہ سوچ کے کوئی بھی اس کو نہ چھوڑے. کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اس کے ایک ایک لفظ پہ، اس کے ایک ایک حرف پہ آپ کو کیا اجر ملنے والا. یہ تو آپ کو ایک ٹکٹ دینے کا لالچ کرتے ہیں نا اور آپ دوڑے چلے جاتے ہیں. یہاں پہ ایک ایک حرف پہ آپ کو کیا مل رہا ہے، یہ اندازہ آپ آج نہیں لگا سکتے، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ آپ کا ایک ایک منٹ جو آپ نے یہاں سپینڈ کیا نا، وہ آپ کو کتنی بڑی سعادتیں اور کتنے درجات وہاں پہ دے دیتا ہے. پھر تو انسان سوچے گا کہ کاش کوئی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرتا جس میں میں اللہ کے ذکر کے بغیر ہے. تو پہلے تو یہ بات اچھی طرح اس سے آپ لوگ جان لیں. دوسری بات یہ کہ اتنے دنوں سے ہم معاشرتی احکامات پڑھ رہے ہیں، کبھی طلاق کے بارے میں، کبھی نکاح کے بارے میں، کبھی عدت کے، کبھی دودھ پلانے کے، کبھی صدقہ کرنے کے، کبھی ربا کے بارے میں. یہ تمام وہ معاملات ہیں جن کو ہم ٹوٹلی دنیاوی معاملات سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے انسانوں کے ساتھ معاملات ہیں نا، تعلقات ہیں. ان میں کوئی بھی یہ ایلیمنٹ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ ہو، کیونکہ ہم تو وہ معاملات سمجھتے ہیں دین کے جن میں جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے، جیسے یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. لیکن یہ جو کام ہے نا سارے، شادی ہو گئی یا کسی کو دودھ پلانا ہے یا کسی کو قرض دینا ہے، تو ہم کہتے ہیں ان کا دین سے کیا تعلق، दीन को चूंकि हम बहुत ही एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम में देखते हैं, हम उसको सिर्फ नमाज, रोजा और इन रिचुअल्स तक समझते हैं, ये बस दो चार चीजें, ये दीन है। कैसे किसी से ताल्लुक जोड़ा जाए, किसी मर्द का औरत के साथ कैसे जुड़ेगा, कैसे जुदाई होगी, कैसे कर्ज लिया जाएगा, कहाँ पे सदका देना है, ये तो हमारी अपनी मर्जी है, इसमें हम जो मर्जी करें। इसमें नाउज बिल्ला इस्लाम को क्या पता, ये मॉडर्न एज है, ये बातें तो हमारे अपने इकोनॉमिस्ट हमें बता सकते हैं। तो ये मामलात ऐसे हैं कि इनमें हम खुद समझते हैं अपने आप को कि हम अकले कुल हैं, हमें पता है, हम जैसे इनको हैंडल कर सकते हैं ना, कोई और इस्लाम थोड़ी हमें बता सकता है। इस्लाम बस मुसल्ले पे है, मस्जिद में, इस्लाम यहीं तक है, बाकी हमारी दुनियावी जिंदगी में इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं। क्या आज तक हम अभी तक जितना भी पढ़ चुके तो क्या ये नहीं पता चलता कि इस्लाम आपके कारोबारों में भी है, बाजारों में भी आएगा, आपके किचन में भी आएगा जहां पे हलाल और हराम की बात हमने पढ़ी, आपके ड्राइंग रूम में भी आएगा और आपके बेडरूम्स में भी आएगा, तब है ये मुकम्मल इस्लाम। उदखुलू फिस्सिल्म काफ्फा, अल्लाह ताला ने फरमाया इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाए, हर जगह इस्लाम नजर आना चाहिए। ये नहीं है कि मस्जिद जाते हुए तो मैं इस्लाम की तस्वीर नजर आऊं और बाकी जगहों पे इस्लाम को ही भूल जाऊं, बाजार में जाऊं तो इस्लाम क्या है, मुझे इससे क्या, जो ट्रांजैक्शंस हो रही है मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसमें इस्लाम का क्या ताल्लुक, मेरे जो बेडरूम के ताल्लुक आते हैं उसमें इस्लाम का क्या ताल्लुक। नहीं, ये सब इस्लाम के दायरे में आएंगे तो तब आप पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल, अदरवाइज आपने तो पिक एंड चूज किया ना, वो जो पहले बात आई थी सूरह बकरा में ही हम पढ़ चुके हैं पहले पारे में, अफतुमीनूना बिबादिल किताबी, क्या तुम ईमान रखते हो बाज हिस्से पे किताब के, हैं सिर्फ बाज हिस्से पे ईमान रखते हो, सिर्फ कुछ हिस्से पे, और बाज का इनकार कर देते, बाज को मानते ही नहीं कि नहीं ये हमारे लिए नहीं है। तो हम इस्लाम को लिमिट नहीं कर सकते कि एक कोने में इस्लाम को बिठाया हुआ और बाकी हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारेंगे, महंगे नहीं। इससे अंदाजा कीजिए कि सबसे लंबी आयत जो है ये किस बारे में, ना नमाज के बारे में, ना रोजे के बारे में, ना जकात के बारे में, ये कर्ज लेने देने के बारे में, क्योंकि कर्ज का मामला ऐसा मामला है, ऐसे तो और भी चीजों के अंदर लोगों में ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, लेकिन माशरे में ना अगर लोगों ने अमन और सुकून से रहना है, अगर आप चाहते हैं इज्जत और एहतराम की फिजा कायम रहे और लोगों में कम से कम झगड़े फसाद हो, तो इस असूल को जो अल्लाह ताला ने ये कर्ज के बारे में दिए, इन असूलों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। चूंकि पहले हम बात पढ़ चुके हैं सदका और खैरात, फिर हमने बात की कि रेबा नहीं लेना, सूद नहीं लेना, सूद के ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं होगी, सूद पे कर्ज नहीं दिया जाएगा, तो फिर कर्ज कैसे दिया लिया जाएगा, कर्ज के क्या असूल होने चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने यहां बताया है। यानी ये जब तुम कर्ज ले रहे हो लिखोगे कैसे, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, गवाह कैसे होंगे, कौन लिखेगा, कौन गवाही देगा, ये सब चीजें इसमें कवर होंगी। और सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला अपने बंदों पर इतना मेहरबान कि उनको उनके माली मामलात में भी, फाइनेंशियल मैटर्स में भी गाइड करता है, उनको भी सही निभाने की तालीम देता है ताकि इंसान नुकसान से बच जाए, ताकि सोसाइटी में पीस हो। आज दुनिया ने तो इतनी रिसर्च कर करके ये कवानीन बनाए हैं, हमें तो 1400 ईयर्स पहले ये बता दिया गया تو اللہ تعالیٰ کو ہماری بھلائی کی کتنی فکر ہے اور اس چیز کی کہ کسی کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو اور لوگ آپس میں امن اور سکون کے ساتھ رہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالی اس آیت کو دیکھتے ہیں اور پارٹس میں دیکھیں گے تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے. اگین ایمان کی بات کر کے مسلمانوں کو کال دی گئی, ان کو بتا دیا گیا کہ تمہارا رنگ تمہاری پہچان نہیں, تمہاری نسل تمہاری پہچان نہیں ہے, تمہارے علاقے تمہاری پہچان نہیں ہے, تمہاری قومیت برادریاں یہ پہچان نہیں ہے. تمہاری پہچان کیا ہے؟ تمہاری پہچان اللہ کے نزدیک ایمان ہے. اسی لیے بار بار ایمان کا نام لے کے, ایمان کا لفظ لا کے کوئی حکم دیا جاتا ہے. ایمان والے کہہ کے پکارا جاتا ہے تمہیں, او فلاں علاقے والے, او عربو, او عجمو, یہ نہیں کہا جاتا. اور یہاں پہ خاص طور پہ ذہن میں رکھنے کی یہ بات ہے کہ اے ایمان والو, تم تو ایمان لا چکے ہو نا, تو تم اپنے فائنینشل میٹرز میں بھی اپنے رب کی دیوی گائیڈنس کو ایکسپٹ کرو. اپنی عقل پہ چلو گے تو ٹھوکر کھاؤ گے. تم تو ایکسپٹ کر چکی ہو نا, ایمان ایکسپٹ کر چکے ہو, اسلام لا چکے ہو نا, تم تو کہتے ہو تمہارا رب پہ ایمان, تو پھر جیسے اس نے کہا ویسے چلو. یہ کیا کرو, اذا تداینتم, جب تم آپس میں لین دین کرو. کس چیز کا لین دین؟ بدین, دین کا, قرض کا. دین کیا ہوتا ہے؟ دو لوگوں کے درمیان جب ادھار کا معاملہ ہوتا ہے نا, لون لیا جاتا ہے, اور وہ بھی الی اجل مسمی تک, ایک مقرر مدت تک, تو اس کو دین کہتے ہیں. ایک تو ہم قرض کہتے ہیں نا, قرضہ لے لیا. قرض دین کب کہلاتا ہے؟ جب اس کے اندر ایک فکس ٹائم ہوتا ہے, ٹائم فکس کر دیا جاتا ہے نا کہ اس وقت میں واپس کروں گا. تو اب کیا ہوگا, جب بھی تم لین دین کا, قرض کا معاملہ کرو گے, وہ والا قرض جس میں ایک وقت مقرر ہے, ایک اسپیسیفک ڈیٹ ہے, تو کیا کرو؟ پہلا حکم کیا آیا؟ فاکتبوہ, فاکتبوہ, لکھ لیا کرو وہ اس کو. آپ کو ڈاکومنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے. اور قرض بھی پھر ایسے نہیں ہو کہ بس ایسے ہی ہے کہ کسی وقت تک, اچھا جب نیکسٹ ایئر سمر میں, نہیں, الا اجل مسمی تک ہونا چاہیے, کوئی اسپیسیفک ڈیٹ لکھنی چاہیے. سمر تو پھر پورا سمر ہی ہوگا, اسپرنگ کہہ دیا, اگلا سال کہہ دیا, تو اگلے سال میں کب. اسی لیے یہ لفظ آیا اجل مسمی کا, کہ مقرر وقت. کوئی ایسے ہی بات نہیں اوپن میں نہیں چھوڑ دینی چاہیے. تو یا تو آپ اس کو پہلا حکم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی قرض لو وہ اجل مسمی تک ہو, اور فاکتبوہ, اس کو لکھو. دیکھیں یہ قلم, قلم جو ہے نا, یہ جو پین ہے, جو لکھنے کا جو بھی چیزیں استعمال ہوتی ہے, قلم, اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم بھی کھائی ہے, تو قلم سے بڑے بڑے پرابلم سے انسان بچ جاتا ہے. جیسے ابھی بھی آپ قلم سے لکھ رہے ہیں, کیوں لکھ رہے ہیں؟ تاکہ بھولے نہیں. اور قرض کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جس میں یہ لکھنے کی بہت ہی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے کہ انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے. وَلْيَكْتُبْ, اور چاہیے کہ لکھے. کون لکھے گا؟ اب یہاں پہ یہ بتایا جائے. اب یہ کتابت کے بارے میں نا ساری بات آئے گی یہاں تک آگے. بالعدل ہے نا, فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بالعدل, یہاں تک کتابت کی بات آ رہی. یہ فاکتبوہ جو ہے نا, تاکہ آپ لاسٹ نہیں ہو جائے نا پوری آیت میں, اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. بریکٹ لگا لیں وَلْيَكْتُبْ سے بالعدل تک. اب یہ ڈسکرپشن ہے ساری لکھنے کی, یہ لکھا کیسے جائے گا, کون لکھے گا, کسی کا کوئی خود نہیں لکھوا سکتا تو پھر اس کے لیے کون لکھے گا, وہ ساری باتیں. لکھنے میں کیا چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے, یہ بالعدل تک.
फक्तुबुहु की डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ आ गई। फिर आगे एक और हुक्म है कि किस तरह और भी क्या किताबत के अलावा क्या किया जाए, तो फिर हम उसको बाद में देखेंगे। पहले हम जब किताबत की जाएगी, जब लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, वल यक तु बैनकुम कातिबुम बिल अदल, और चाहिए कि लिखे तुम्हारे दरमियान एक लिखने वाला। कातिबुन है ना, तो कोई भी लिखने वाला हो सकता है। उस जमाने में तो चूंकि बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे, तो लिखने वाला बहुत एक मिलना भी एक मुश्किल बात होती ना, ज्यादा लोग तो उम्मीद थे। मगर आज के दौर में बाकायदा वसीका नवीस होते हैं। वसीका नवीस उनको कहते हैं जो लिखते हैं। वो आपने देखा होगा दांतों के बाहर भी कई लोग बैठे होते हैं, वो लिख रहे होते हैं, कोई दरखास्त लिखानी हो किसी ने, तो उनको सारी चीज पता होती है किस तरह से इसको लिखना। इसी तरह यहाँ पे इन मुल्कों में वकील होता है, आपने देखा ना वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, जब कोई लोन लेना होता है या कुछ है तो उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, और हमें उतने कानूनी नुक्ते नहीं पता होते जिस तरह से वो लिख रहा होता है, जिस तरह से वो एक एक चीज की माइन्यूट डिटेल्स में जाके तो उसको लिखता है, फिर हम बस साइन कर देते हैं। तो वही वाली बात है यहाँ पे, वल यक तो बैना को तुम्हारे दरमियान लिख ले, जो भी कर्ज का मामला है ना तुम्हारे दरमियान हो रहा है, किसके दरमियान, तुम्हारे कौन, बैनकुम कौन तुम्हारे, यानी कर्ज लेने वाले और देने वाले के दरमियान जो भी मामला तय हो रहा है वो लिख ले एक लिखने वाला। किस तरह लिखे, बिल अदल, अदल के साथ। क्या मतलब अदल के साथ, यानी जो भी मामला तय पा रहा है। अब हो सकता है कि कर्ज लेने वाला या देने वाला उनमें से कोई पढ़ा लिखा ना हो, ना जानता हो, उसको कानूनी नुक्ते इतने पता ही ना हो। अब जैसे हमारे जैसे लोग ले पर्सन को क्या पता, तो अब उसको तो पता है ना वो किस तरह से लिखे, ठीक ठीक बात लिखे, ऐसी बातें ना लिखे जो अनक्लियर हो, जिसमें डबल मीनिंग्स निकल रहे हैं, जिसमें कोई आगे मसले पैदा हो जाए। हर बात को ठीक ठीक क्लियर लिखे। और अगर कोई अनपढ़ है तो उसको तो नहीं पता कि क्या लिखा जा रहा है, तो कातिब को अदल के साथ ही लिखना, चाहे वो उसको नहीं भी समझ आ रही लेकिन ये सही सही बात लिखे, ये कातिब की जिम्मेदारी है, उसको अल्लाह ताला ने इंस्ट्रक्शन दिए। और आज तो इसके ऊपर आपको पता है कि पैसे भी लिए जाते हैं, जाहिर है ये एक प्रोफेशन बन गया ना, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उनको जो लॉज में जो बारीक बातें होती हैं वो उनको समझ आती हैं, तो हमें नहीं आती तो हम हायर कर लेते हैं किसी को, तो उसमें फिर लिख दिया जाता है भाई ये कंडीशंस हैं, जब वापस किया जाएगा तो ये होगा और इस डेट को होगा और ऐसे होगा, वो सब चीजें, ठीक है, ताकि वापसी के वक्त झगड़े ना पड़े। जैसे हमने पहले बात की थी, बहुत सारी आप खबरें इस तरह की सुनते भी होंगे कि किसी ने कर्ज किसी से लिया, उसके बाद वापस नहीं लिया, उसके बाद फिर झगड़ा पैदा हुआ और फिर वो उसके पीछे पड़ गया, फिर उसके बाद नौबत, यानी इन शॉर्ट ये है होता है कि कभी कभी कत्ल भी लोग कर देते हैं इस वजह से। अगर कत्ल तक नहीं भी नौबत आती, दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं, इसने हमारे इतने पैसे खा लिए, हमने उसको फलां टाइम पे दिए थे, उसने कभी वापस नहीं किए, अब तो वो हमारी कॉल्स भी नहीं उठाता, अब तो वो मिलता भी नहीं, तो इस तरह की शिकायत हो जाती है, फिर गइबतें होती हैं, फिर आपस के अंदर ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, एक मुंह छुपाता फिरता है, फिर इंसान उसमें झूठ भी बोलता है, अच्छा फलां वक्त में दे दूंगा, फलां में दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, तरसों दे दूंगा, और दूसरा जो है ना उसके घर के चक्कर लगा लगा के, और फिर वो ख्वार होता है खुद भी, तो इससे इतने ताल्लुकात खराब होते हैं। देखें शुरू में तो लोग अक्सर ये कहते हैं आओ क्यों लिखा जाए, हम क्यों लिखें, हमें भला एतबार नहीं है, और खास तौर पे जो ले रहा होता है ना, देने वाला तो शायद चाहे भी कि लिख लिया जाए, जो लेने वाला होता है वो क्या कहते हैं, तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं, एतबार नहीं, मैं लेके भाग जाऊंगी तुम्हारे पैसे, जो लिखाने बैठ गए। वो भरोसे और एतबार की बात नहीं है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया लिखो। अब जहां पे बैंक है या जहां पे और चीजें, वहां पे तो लिखा जाता ही है, लेकिन जब दो लोगों के दरमियान ट्रांजेक्शन होती है तो वहां पे लिखा नहीं जाता। फिर आपने मसलन अपनी बहन को कोई कर्जा दिया, भाई को दिया, उसने कहा भाई फलां डेट को फलां वक्त में मैं लौटाऊंगा, उसके बाद आपने लिखा ही नहीं। लिखा इसलिए नहीं कि वो भरोसे की बात है जी। वो अल्लाह ताला ने इस बात पे इतनी तवील आयत कुरान पाक की तवील तरीन आयत उतार दी और हम इस चीज को कुछ समझते नहीं। उसके बाद हम जब नुकसान उठाते हैं, जब शुरू में पहले ये होता है कि हाँ नहीं भाई है एतबार है, बहन है एतबार है, उसके बाद वही बहन भाइयों में ऐसी दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं कि हद से ज्यादा। इसी तरह जैसे अब बाज दफा ये होता है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमने पाकिस्तान में किसी को कर्ज दिया। अब क्या है कर्ज, आपने यहाँ पे आपने पैसे दिए डॉलर में, उन्होंने दिए रुपीज में वहां पे। अब जब वापस लौटा रहे हैं, डॉलर की तो कीमत इतनी चढ़ गई, आपने उसको आज 100 डॉलर दिया था, जब उसने वापस दिया तो वो तो 90 हो गए थे। अब आप कहते हैं मुझे तो 100 ही चाहिए, वो कहता है कि मैंने तो इतने ही दिए, अब मैं क्या करूं अगर डॉलर बढ़ गया, रुपीज में तो मुझे इतने ही मिले। ये चीजें तो पहले तय करनी चाहिए थी जिस वक्त कर्ज दिया जा रहा, तो ये चीजें सब लिखी जाए उस वक्त, किस करेंसी में वापस करोगे, कैसे करोगे, ठीक है, ताकि किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। अदल के साथ हर बात ठीक ठीक लिख ली जाए। अच्छा, अब जब के उस जमाने में देखिए इस तरह के कातिल तो नहीं होते थे, और ये भी नहीं होता था कि कोई मतलब ऐसी कोई प्रोफेशन हो इस चीज का, तो जो लिखने पढ़ने वाले थे, अब बहुत ज्यादा ये चांस था कि वो अब नखरा करने लगे या वो अब किसी को ना लिख के दें और कहीं इसको अपने लिए मसला समझे या कुछ है। तो अल्लाह ताला ने अब आगे उनको इंस्ट्रक्शन दी, ये वला या अबा से इंस्ट्रक्शन किसको, कातिब को। कातिब को क्या कहा जा रहा है, वला या अबा कातिबुन अन यक्तुबा कमा अल्लामहुल्लाह, ना इनकार करे कातिब। कातिब तुम्हें भी लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए। अब ये भी हो सकता है ना, जाहिर है उनकी डिमांड इतनी हो गई, अब लिखाने वाले पीछे पीछे भाग रहे हैं उनके और वो जनाब हाथ ही नहीं आ रहे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, तुम लिखने से इनकार ना करो। तो बाज दफा वो इसलिए भी इनकार करते थे कि हमें क्या जरूरत है कि हम इस मामले में पढ़े, किसी की जिम्मेदारी लेना हमें क्या मसला पड़ेगा, हम क्यों जिम्मेदारी लें। यही इंसान इसीलिए घबराता है ना, बाद में इन्होंने मेरे पीछे पड़ जाना, कहेंगे तुमने ये बात इस तरह से क्यों लिखी, और एक जिस पार्टी को नुकसान हो रहा होगा उसी से तो वैसे ही ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। तो लेकिन अल्लाह ताला ने कातिब को ये हुक्म दिया कि तुम लिखने से इनकार ना करो, क्यों, इसलिए कि अन यक्तुबा कमा अल्लामहुल्लाह, कि वो लिखे जैसे कि सिखाया उसको अल्लाह ने, अल्लाह ने तुम्हें लिखना पढ़ना सिखाया है। क्या पहले से तुम लिखना पढ़ना जानते थे, माँ के पेट से जब पैदा हुए थे तो क्या लिखे पढ़े आए थे, किसने सिखाया तुम्हें। सोचे ना, इंसान को अल्लाह ताला ने फरमाया ना कुरान पाक में कि अल्लाह ताला ने उसको कलम के जरिए लिखना सिखाया, अल्लाह मल इंसान बिल कलम, अल्लाह ताला ने कलम के जरिए उसको लिखना सिखाया, तो सिखाया किसने, अल्लाह ने। तो जिस अल्लाह ने लिखना सिखाया, तो क्या तुम उसकी हुक्म के मुताबिक खल्के खुदा के इस किस्म के मामलात तय नहीं करोगे। ये भी शुक्र है इस इल्म का कि अल्लाह ने तुम्हें ये इल्म दिया है, तो शुक्राना क्या होगा, इसका हक अदा क्या करना कैसे होगा कि अल्लाह की जो मखलूक है उसके काम आया जाए लिख के। समझाई बात। अब बाज दफा ऐसे भी होता है कि सिर्फ इस चीज के लिए नहीं, बाज कभी आपकी मेड्स होती है या और लोग जो कि अनपढ़ होते हैं, आप लिखना पढ़ना जानते हैं, वो आपसे कोई खत लिखवाना चाहते हैं, कोई बात लिखवाना चाहते हैं, कोई साफ किताब लिखवाना चाहते हैं, आओ करके मैं तो लिखवाऊंगा नहीं। ये उस वक्त हमेशा ये याद रखा करें कि आज मुझे जो अल्लाह ताला ने ये नेमत दी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है कि आप पढ़ लिख सकते हैं, तो इसका शुक्र क्या है कि अल्लाह की मखलूक को मैं इनकार ना करूं, ये इसका शुक्र अदा करना, ये अल्लाह ने आपको तौफीक दी। तो इन हदीस में आता है कि ये भी सदका है कि किसी काम के करने वाले का हाथ बटा दो या किसी गिरे पड़े का काम कर दो, ये भी सदका है। तो तुम लिख दिया करो, ये भी तुम सदका कर रहे हो, ये भी नेकी है। और हदीस में ये भी है कि जो इल्म को जान बूझ कर छुपाएगा कयामत के दिन उसे आग की लगाम पहनाई जाएगी। यहाँ कहते मुझे नहीं लिखना पता आता जाए। तो ये भी जो लिखने पढ़ने वाले हैं उनको अपनी इस जो अल्लाह ताला ने स्किल दी है, सलाहियत दी है, इससे उन लोगों का काम करना चाहिए जो लिखना पढ़ना नहीं जानते। और अल्लाह ताला को देखे पता है ना, ये जो कातिब है वो घबराएगा, तो वो तो दिलों के अंदर के हाल जानता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फौरन ये इंस्ट्रक्शन दे दी, तुमने इनकार नहीं करना और वैसे ही लिखो जैसे अल्लाह ने सिखाया। और कैसे अल्लाह ने सिखाया? आदल के साथ। तो अपने कलम के साथ दूसरों को फायदा पहुंचाए, फल यक तो बस चाहिए कि वो लिखे जैसे अल्लाह ने सिखाया वैसे लिखे। वल युम लिल, अब कौन डिक्टेट करेगा? अब जो लिखने वाला है, अब मिसाल के तौर पे दो लोगों के दरमियान कर्ज का मामला हुआ, ए ने बी को कर्ज दिया, अब लिखे कौन? वो तो आपने कातिब ले लिया, अब कातिब को लिखवाएगा कौन? कातिब को खुद थोड़ी पता है क्या लिखना। अब आप उसको कुछ बताते हैं ना, कुछ डिक्टेट कराते हैं। आप मसलन लॉयर करते हैं तो उसको बताते हैं भाई मैं फलां चीज इतना लोन ले रहा हूँ, इतना है, ये है, ये सब चीज आप लिखवाएंगे उसको। तो यही चीज यहाँ पे बताएगी कि कौन उसको डिक्टेट कराएगा, कर्ज लेने वाला या देने वाला। अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्या फरमाया, वल युमली लिल्लदी अलैहिल हक, वो डिक्टेट कराएगा जिसपे हक है। हक का मतलब क्या? यानी उसने अदा करना है कर्ज, यानी मकरूज जिसने लोन लिया है वो डिक्टेट कराएगा। अब ये देखें यहां पे क्या होता है, आजकल बैंकों के मामले में उलट होता है। कौन लिखवाता है? बैंक लिखवाता है, देने वाला लिखवा रहा है। जबकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जो लेने वाला है ना वो लिखवाए। इसलिए कि देखिए कर्ज लेने वाला जब खुद लिखवाएगा उसको तसल्ली रहेगी कि मेरा मामला क्या है, उसको याद रहेगा मैंने कितने का कर्ज लिया, मुझे कब वापस लौटाना, क्या लिखा जा रहा है। तो वो डिक्टेट करवाए जिसने कर्ज लेना है कि देना है, जिसने लेना है। वल यत्तकिल्लाह रब्बहु, और चाहिए कि डरे अल्लाह से जो रब है उसको। तकवा तकवा तकवा, ये तकवा दीन की बुनियाद है। ऐसे लगता है कि पूरी सूरह बकरा का जो थीम है ना वो है ही तकवा। शुरू भी तकवा मुत्तकीन के जिक्र से और आखिर तक आप देखिए तकवा की बात। अल्लाह से डरो, लिखवाने वाला जो है ना वो अल्लाह के खौफ के साथ लिखवाए। जहां अदल की इंस्ट्रक्शन दी गई लिखने वाले को, तो जो डिक्टेट करा रहा है वो भी खुदा खौफी रखे। जब खुदा खौफी होगी तो वहां पे गलती कौन कर सकता है? एक डरा हुआ इंसान जो होता है उसके मामला दुरुस्त होते हैं, और जो बेखौफ होता है, न डर होता है, वो कहीं भी डंडी मार सकता है। तो कहीं भी जरा भी हेरा फेरी नहीं करनी, कहीं भी जरा भी लिखवाने में कमी बेशी नहीं करनी। ये ना हो कि बात जुबानी तो कुछ और तय हुई है और जब लिखवाने बैठे तो जरा सा हेर फेर इधर से उधर कर दिया, एक जीरो कम कर दिया। जाहिर है कर्ज लेने वाला तो यही कहेगा ना, कम देना पड़े मुझे वापस लीजिए। तो यहां कुछ ऐसी बात लिख दी कि माने ही उलट हो गए, नहीं अल्लाह के डर के साथ लिखो, वला यबखस मिनहु शैअन, और ना कमी करे उसमें से किसी चीज। जैसे मैंने कहा कि कर्ज लेने वाला जो है ना वो लिखवा रहा है ना, वो डिक्टेट करा रहा है, तो वो तो जाहिर है कमी चाहेगा कि मैंने 50,000 लिया है तो एक जीरो कम कर दू, 5,000 बन गए। ठीक है, तो जरा सी भी कहीं डंडी नहीं मारनी, ये ना हो कि लू ज्यादा और दू कम। इन क्या ना, अच्छा आप आगे ना तीन सिनेरियोज दिए गए, तीन सिनेरियोज उन लोगों के हैं जो कि खुद नहीं लिखवा सकते, उनका कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अब ये इतनी सुभान अल्लाह डिटेल में अल्लाह ताला ने सारी बात को कवर किया ना, इससे पता चलता है कि इसकी सीरियसनेस कितनी है। अब देखें तीन तरह के लोग हैं जो लिखवाने की इस्तात नहीं रखते, वो कर्ज ले तो रहे हैं। इन कान अल्लज़ी अलैहिल हक, फिर अगर हो वो शख्स जिसके ऊपर हक है, याद रखें जब भी ये बात आएगी जिसके ऊपर हक है तो क्या मतलब है, यानी जिसने कर्ज लिया, अब हक है ना कि वो कर्ज वापस दे। तो कर्ज लेने वाला अगर कैसा है, सफीहन, सफी है, नंबर वन क्या है, छोटा सा नंबर वन पड़ा, सफी है, बेवकूफ है, कम अकल है, अनवाइज है, कोई जाहिल है। औ दुईफन, या नंबर टू क्या है, कमजोर है। कमजोर कैसा हो सकता है, जैसे जिस्मानी तौर पे भी कमजोर हो सकता है, अकल में भी कमजोर हो सकता है, जैसे इंसान बहुत ज़ईफ हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, बात बात पे उसको जो है ना बातें भूल जाती हैं, जरा सी बात करते करते ही बात भूल जाती है। आओ या ला नहीं, यस्ततियु, वो इस्तात रखता, अयुमिल्ला, कि वो इमला कराए, कि वो डिक्टेट कराए। अब ये तीन सिनेरियोज हो गए, पहला क्या है, यहाँ तो वो खुद यानी कर्ज लेने वाला जो है ना मिसाल के तौर पे कम अकल है, इतनी उसकी समझ नहीं है, हो सकता है वो कोई बच्चा हो, नाबालिग बच्चा हो। अब वो ये कैसे हो सकता है, हाँ सोचेंगे बच्चा कौन कर्ज लेता है। देखें कुरान जो है ना हर जमाने हर तरह के माशरती तबके जो भी लेवल्स हैं माशरे में सोसाइटी में होते उनके लिए, हम जब कुरान को पढ़ते हैं तो शायद हम सोचते हैं कि ये हमारे ही जैसे जो जिस माहौल में हम रहते हैं शायद सारी दुनिया इसी में चल रही है, हालांकि ऐसा नहीं है। आपको एक मैं एग्जांपल देती हूँ, इससे न कि कोई बच्चा है छोटा लड़का, उसका बाप फौत हो जाता है, अब उसके कफन दफन के लिए उनके पास पैसे नहीं, अब वो इधर उधर भी देखता है, रिश्तेदार भी सारे इतने गरीब हैं कि उनके तो खुद खाना पीना नहीं चलता, उनकी तो खुद गुजर बसर नहीं होती सही से, तो खुद दो वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी करते, और मोहल्ला भी ऐसा है जिसमें सारे ही लोग गरीब हैं, अब कौन देगा इसको, इसके बाप का कफन दफन है। अब क्या है, कर्ज लेना पड़ेगा। अब जो रिश्तेदार वगैरह वो है वो कर्ज लेने के मामले में इस बच्चे की इतनी तो हेल्प कर सकते हैं कि लिखवा दें उसके लिए, बाकी वो अपने ऊपर नाम पे अपने नहीं कर्ज लेंगे, वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है, ये बड़ा होगा खुद ही पूरा करता रहे, हम अपने नाम पे क्यों लें कर्ज। ठीक है, तो देखिए ना सबके हालात एक जैसे तो नहीं है ना, कोई एक मैंने आपको सिनेरियो दिया इसका। तो अब क्या होता है कि वो इस बच्चे के नाम पे कर्ज लेंगे, लेकिन अब बच्चा कैसे डिक्टेट कराए, तो वो सफी हो गया ना, वो तो अम्मा कल है, उसको तो इतनी समझ नहीं है, तो उसके लिए अब क्या क्या उसको वो क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन में, ये यहाँ बताया गया। यहाँ बूढ़ा हो, अब बूढ़े भी कई इतने बूढ़े हैं, अब कर्ज की जरूरत पड़ गई है, कोई ऐसा मामला हो गया, लेकिन अपनी बात भी उनको याद नहीं रहती, तो वो लिखवाएं क्या सही से, वो तो सही से नहीं लिखवा सकते, तो उनका क्या किया जाए। या वो जो इस्तात ही नहीं रखता कि डिक्टेट कराए, वो कैसे हो सकता है कि कैपेसिटी नहीं उसके अंदर, इतनी ताकत ही नहीं, मिसाल के तौर पे कोई गूंगा है तो ठीक है ना, वो या कोई ऐसा है जिसको लैंग्वेज ही नहीं वो बोल नहीं आती उस कंट्री की, अब मसलन यहाँ पे किसी को इंग्लिश ही नहीं आती, वो किस तरह से बताएगा कि भाई ये लिखो। तो ये तीन चीजें हैं ना जो रुकावट बन सकती हैं डिक्टेट कराने में। तो अब क्या होगा? हुआ वो फल युम ली, बस चाहिए कि इमला कराए वली यूहु, वली उसका बिल अदल, साथ अदल। अब इनका जो मसलन बच्चा है तो उसका कोई गार्डियन होगा, कोई कोई होगा, अपने नाम पे नहीं वो कर्ज लेगा, लेकिन वो डिक्टेट कराएगा, ठीक है, डिक्टेट कराएगा अदल के साथ। इसी तरह कोई जईफ है तो हो सकता है उसको कोई वकील हो। इसी तरह कोई कोई इस्तात नहीं रखता इमला कराने की तो उसका कोई हो सकता है इंटरप्रेटर हो। तो यहां वली में एक थर्ड पार्टी आ गई ना कि जो आके इसकी जगह पे डिक्टेट कराएगी, लेकिन वो पार्टी भी अदल के साथ बात करे। ये नहीं है कि किसी के ऊपर तर्स खा के, ये नहीं, ये तो हमारा एक यतीम बच्चा, ये तर्स खा के कम लिखवा दिया उसके लिए। यहाँ जो कर्ज देने वाली पार्टी है वो इतनी स्ट्रांग है तो उनको खुश करने के लिए कर्ज ज्यादा लिखवा दी, नहीं, वली भी इंसाफ से लिखवाए। इसको ये भी जायज नहीं है कि कोई भी हीरा फेरी इधर उधर करे। आप कुछ बात नोट कर रहे हैं? दूसरी दफा अदल की बात आई, कितना ये दीन इंसाफ पसंद है कि कभी भी किसी के साथ कोई ज्यादती ना होने पाए, ना कर्ज देने वाले को कभी कोई नुकसान उठाना पड़े, ना लेने वाले को। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि हमारा रब क्या पसंद फरमाते हैं, अदल, इंसाफ। अब ये देखें जो रब इंसानों को इंसानों के साथ ज्यादती करने को बर्दाश्त नहीं करता, तो सोचें क्या कयामत के दिन वो किसी के साथ ज्यादती होने देगा। खुद सोचें, वहां भी एक एक बंदे को इंसाफ दिलाएगा वो, किसी ने किसी का हक मारा होगा तो उसको उसका हक दिलाएगा, एक पीलू की टहनी के बराबर भी, छोटी सी ब्रांच होती जिस जैसे समझ ले मिसवाक के बराबर, इतना भी किसी ने किसी का हक मारा होगा तो उसको उसका हक देना पड़ेगा। इवन किसी जहन्नमी के ऊपर किसी जन्नती का कोई हक होगा तो वो बंदा जहन्नम में नहीं जा सकता जब तक इस जन्नती का हक ना दे दे। इसी तरह किसी जन्नती के ऊपर अगर हक है किसी जहन्नमी का, तो ये जन्नती भी जन्नत में एंटर नहीं हो सकता, चाहे अभी कितना ही नेक है, मगर इसने इसका अगर जहन्नमी का भी हक देना है, ये नहीं कि ये तो जहन्नम में जा ही रहा है तो फिर क्या हो गया, तो उसने तो जाना ही है ना, ये भी जन्नत में जा ही रहा, नहीं, यू हैव टू पे। यहां पे पेमेंट होगी, फिर उसके बाद तुम जन्नत में जाओगे और वो जहन्नम में जाओगे। अब पेमेंट फिर आपको पता है ना किन कॉइन्स में होगी, वहां पे पेमेंट तो नेकियों और बदियों के उसमें ट्रांजेक्शन होंगी, वहां पे तो कोई डॉलर और दीनार और दिरहम तो होंगे नहीं। तो जिसका हक होगा अल्लाह ताला उसका हक उसको दिलाएगा। कोई यहाँ पे परेशान ना हो कि मेरा हक लेके कोई फलां चला गया, हाय फलाने ने मेरा हक मार लिया, हमने भी नहीं हक देने क्योंकि उसने भी नहीं हमारा हक दिया। अल्लाह ने सब के हक दिला देने, अदल 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 की बात है। और दूसरी बात इसमें नोट करनी है ये इस चीज को कि ऐसे रब के बारे में क्या आप सोच सकते हैं कि वो दुनिया में हमें कोई ऐसे हुक्म देगा जो हमारे साथ अदल वाले नहीं होंगे, जो हमारे साथ फेयर नहीं होंगे। जो रब फेयरिटी पे इतना जोर देता है कि एक इंसान भी दूसरे इंसान के साथ कहीं कोई नाइंसाफी ना कर दे, क्या वो हमारे लिए ऐसे हुक्म देगा जो हमारे साथ नाइंसाफी हो, जिसमें हम कहें दैट्स नॉट फेयर, लेकिन हम कहते हैं क्या आप अल्लाह ताला से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसे हुक्म दे? वो तो इतना सेंसिटिव है इंसानों के आपस के मामलात में कि जरा सी भी, देखो थोड़ी सी भी, वला यबखस मिनहु शैयन, कमी ना करना किसी चीज की भी। 1005 रुपए लिए तो 1005 ही लिखना, ये ना हो गए 5 रुपए की तो क्या बात है, कोई बात नहीं, 5 ही तो रुपए हैं, 1000 लिख दो, नहीं, पांच भी लिखो, एक 50 सेंट है तो वो भी लिखो, जरा सी भी नहीं कमी कर सकते। जिसने ये फरमाया कि जर्रे के बराबर नेकी भी होगी तो वो तुल जाएगी। जर्रा कौन क्या होता है पता है आपको? डेफिनेशन जर्रे मालूम है आपको? जर्रा इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम को भी इन्होंने डिवाइड कर दिया। पहले स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहते थे ना, आप कहते हैं एटम के भी अंदर है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो अब तो जर्रा कितनी छोटी चीज है, वो इतनी छोटी चीज को भी उस दिन तोड़ लेगा। वो तो ऐसा इंसाफ करने वाला, और उससे कोई सोचता है कि वो ज्यादती कर जाए, वो ऐसे हुक्म दे दे। वो तो इंसानों को भी कहता है कि तुम भी अदल करो एक दूसरे के साथ, इंसाफ से तो चलो एक दूसरे के साथ। कभी भी दिल में ये गुमान भी ना आने पाए कि कहीं कोई हुक्म ऐसा आ गया जिसमें हमारे साथ तो बड़ी ना इंसाफी है, हम बिचारी औरतें हमारे साथ बड़ा जुल्म है। नहीं, वो जात जुल्म से पाक है, उसने जुल्म को अपने पर हराम किया है। फिर फरमाया, अब यहां तक किताबत की बात हो गई, ठीक है। तो पहली क्या दईन में बात हुई थी, एक तो अजल मुसम्मा तक हो, एक स्पेसिफिक डेट आपको स्पेसिफाई करनी है। नंबर टू फक्तुबूहु, उसको लिख दो, लिख लो। अब लिखने के अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस आ गई। नंबर थ्री क्या? वस्तशहीदू, और गवाह बना लिया करो, गवाह तलब कर लिया करो। यानी अब ये डॉक्यूमेंटेशन हो गई है ना, उसके ऊपर भी विटनेसेस होने चाहिए, गवाह बुलवाए जाए। इस तरह से ये डॉक्यूमेंट मुकम्मल होगा। अब ये नहीं है लिख के कोई, अब मैं कहूं मैंने इसको कर्ज दिया, मैं अपने घर में ही लिख के और अपने पास खुद ही अपनी अलमारी में रख लू, तो ये कोई काबिल एतबार चीज नहीं है, ठीक है ना। एक तो बैना कुम है ना, दरमियान तुम्हारे दोनों होने चाहिए जिस वक्त लिखा जा रहा है, लिखने वाला भी और कर्ज देने वाला भी और लेने वाला भी। वो यानी उनके दरमियान जो चीज बात हो रही है, लिखने वाला उसको लिखेगा और इमला ये करवाएगा जो ले रहा है। अब ये सारी डॉक्यूमेंट तैयार हो गई, इसके ऊपर आप गवाह बनाओ, गवाह लेकर आओ, ताकि कोई ना इंसाफी का जरा भी खतरा ना रहे, बात बिल्कुल पक्की हो जाए। अब इसके बाद भी अगर कोई ज्यादती करेगा ना, कोई किसी का हक मार लेगा, तो क्या होगा? सबूत के तौर पे आपके पास डॉक्यूमेंट होगा और गवाह भी होंगे जिनके सिग्नेचर हुए, जरूरत पड़ेगी तो वो गवाही देंगे कि हाँ हमने ये विटनेस किया था ये ट्रांजेक्शन। समझ आ गई ये बात? इसी तरह हो सकता है ये जिसने कर्ज लिया है कि इसमें कितनी सुभान अल्लाह हिकमतें, अब कर्ज लेने वाले हो सकता है कल को वो कर्ज लौटाने की पोजीशन में ही ना रहे। अब क्या, कम अज कम जिसने कर्ज दिया है उसके पास डॉक्यूमेंट होगा ना, प्रूफ होगा। और सिर्फ डॉक्यूमेंट ही नहीं, अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट होता तो लोगों ने कहना था क्या पता घर में ही लिख लिया उसने, नहीं उसके ऊपर सिग्नेचर भी है विटनेसेस के। तो फिर अब वो दिखाएगा ये देखें इसने मेरे से कर्ज लिया था और अब ये नहीं लौटा सकता, तो हो सकता है लोग आपस में पैसे जमा करके इसको इसकी मदद कर दें, इसको रकम अदा कर लें। इसी तरह हो सकता है, जिंदगी का तो भरोसा नहीं, हो सकता है मकरूज मर जाए। अब देखें जिसने जिसको पैसे देने हो, जिसने कर्ज दिया हो, वो अगर मर जाएगा तो शायद मकरूज को तो इतनी फिक्र ना हो कि मैंने अब कर्ज लौटाना है, लेकिन जिसके पैसे कहीं मारे जा रहे हो ना, तो मकरूज अगर मर गया, जिसने कर्ज लिया हुआ वो मर गया, तो उसको तो लाले पड़ जाएंगे कि हाय अब मेरा क्या बनेगा, मैंने तो इतने पैसे उसको दिए हुए। अब अगर कहीं लिखा पड़ा नहीं हुआ, अब वो अगर वारसों के पास जाता है, जी आपके वालिद ने मेरे से इतने लाख लिए थे, वो कहते हैं चलो जाओ तुम्हारे पास क्या सबूत है, कर्ज लेने वाला तो दुनिया से चला गया, वो तो ना आके बताएगा कि हाँ मैंने लिए थे इससे, वो कहेंगे सबूत दिखाओ। अब इसके पास कोई सबूत ही नहीं अगर इसने नहीं लिखा है, और अगर सबूत के तौर पे कोई डॉक्यूमेंट दिखा भी देता है, अगर उसके ऊपर कोई गवाह ही नहीं बनाए, तो तुम हमें क्या पता तुम घर में ही लिख के ले आयो, ठीक है ना। तो उस वक्त अगर उसके ऊपर गवाह भी मौजूद है ना, तो फिर आप वारसों को पता है कि जी हमारे खुदा ने, तुम हमारे वालिद हैं या भाई ने इतना कर्ज लिया था, ये इसका सबूत है, हमें इस कर्ज को विरासत में से पहले ये कर्ज अदा करना। क्योंकि आपको पता है ना कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कर्ज है शहीद का भी कर्ज के बारे में सवाल होगा, उसके बाकी गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर देता है लेकिन कर्ज को नहीं माफ करेगा, और कर्ज के साथ रूह मुअल्लक रहती है, लटकी भी रहती है जब तक कर्ज ना अदा हो जाए। तो कर्ज कोई मामूली बात नहीं है, कर्ज लेके दुनिया से चले जाना आज तो कोई बिग डील ही नहीं है। लोग कहते चलो अच्छा कर्ज लिया था, सारे ऐश भी किए दुनिया में और उसके बाद मर गए, ना लुटाना पड़ा ना कुछ। नहीं, जिसको आखिरत पे यकीन है वो तो कर्ज को अपने ऊपर एक बोझ समझता है, इसीलिए कर्ज लेना कोई पसंदीदा बात नहीं है। लेकिन कर्ज लेना ही पड़ जाए तो डू इट दिस वे, ताकि बाद में वारिस कम से कम कर्ज को अदा कर दे, वरना देखें लेने वाला बेचारा वो तो भुगतता रहेगा वहां पे आखिरत में। और अगर ये जो जिसने कर्ज अदा दिया था उसको अगर इसको वापस नहीं उसकी रकम मिलती तो क्या होगा क्यामत में, वो तो जाके नेकियां ले लेगा इसकी। अब तो जाहिर है वहां पे तो नहीं वो कर्ज दे सकता वापस, तो क्या देना पड़ेगा उसको, अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी इसको। तो बेहतर यह लिखा होगा तो वो वारसों के पास जाएगा और वो उसी वक्त उसको दे दें ताकि मामला क्लियर हो जाए। तो बस तशहीदू, गवाह बना लिया करो, शहीदैन दो गवाह, दो गवाह किससे, मेरे रिजालिकुम अपने मर्दों में से। फाइन, फिर अगर लम यकूना रजुलैन, अगर ना हो तुम्हारे पास दो मर्द। देखिए अगर दो मुस्लिम्स के दरमियान ये ट्रांजेक्शन हो रही है तो मुस्लिम ही मर्द होने चाहिए, लेकिन अगर मसलन दो मर्द नहीं मिलते, वो भी आकल हो, बाले हो, मुसलमान हो, तो क्या करो, फराजुलन तो एक मर्द कर लो, वमरा अतानी और दो औरतें कर लो जो गवाही दे। कौन होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए, उनकी क्या शर्त हो, मिम्मन तरदौना मिनश्शुहदा, उसमें से जो तुम पसंद करते हो गवाहों में से, जो जिनकी गवाही पसंद करते हो का क्या मतलब, यानी जिनकी गवाही पे आपको एतमाद है, जिनकी शोहरत अच्छी है, जो कोई ऐसे बदनामे जमाना लोग नहीं है, मतलब मुनासिब लोग हैं, ठीक है, उनको मुनासिब सही समझा जाता है सोसाइटी में, काबिले भरोसा लोग हैं, ठीक है, ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी लोग हैं। तो उन जिनको तुम पसंद करते हो उनमें से एक मर्द और दो औरतों को तुम गवाह बना। क्यों दो औरतों को, अंत दिल्ला एहदाहुमा, ताकि अगर भूल जाए उन दोनों में से एक, फतुज़क्किरा एहदाहुमल उफरा, तो याद दिहानी करा दे दूसरी उसको, इस एक को दूसरी याद करवा दे, रिमाइंड करा दे, और भूल तो आदमी भी सकता है, तो फिर आदमी का काम चांस है भूलने का, औरत के साथ ज्यादा भूल लगी हुई है, क्यों और क्या वजह है, और ये चीज यहां पे डिटेल में इंशाल्लाह हम देखते हैं। दो मर्द या हो या फिर एक मर्द और दो औरत, तो यहाँ पे तो पता चला कि यानी अगर एक मर्द नहीं है तो उसकी जगह दो औरतें होंगी, तो ये क्या, ये तो औरतों की गवाही आधी हो गई, और ये तो हमारी हमें तो किसके कुछ समझा ही नहीं गया, ये तो हमें ऐसे समझा गया कि हम कुछ है ही नहीं है सही। यानी विमेन लिब के जो नारा लगा ना दुनिया में, तो इस चीज को बहुत ज्यादा उछाला गया है कि इस्लाम ने देखें कितना जुल्म किया औरतों को, औरत की गवाही आधी, बल्कि कई मजाक में भी लोग कहते हैं ये आधी गवाही, औरत को क्या कहते हैं ये आधी गवाही। और इसकी वजह से औरतों को खास तौर पे दीन से मुतनफिर कराया गया कि देखो तुम्हारे तो दीन में कोई हकूक ही नहीं, तुम्हें क्या समझा जाता, तुम्हें तो ऐसे समझा जाता। तो इस चीज में औरतों को समझना चाहिए कि क्यों अल्लाह ताला ने ये फरमाया, जब अभी इसीलिए मैंने इस बात पे इतना जोर दिया पहले आपको कि अल्लाह ताला किसी के साथ जुल्म करने वाला नहीं है। सबसे पहले तो ये बात अच्छी तरह से समझ ली, जिसको इस बात में ईमान है उसको तो ये बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। लेकिन मुझे अभी तक अच्छी तरह याद है कि मैं बहुत छोटी थी, स्कूल में थी, तो एक टीचर थी और वो हर वक्त ये यानी सोशल स्टडीज की टीचर थी, वो हर वक्त ये बात करती रहती थी कि इस्लाम ने तो औरतों को देखे कोई भी राइट्स नहीं दिए, इस्लाम ने तो औरत देखे दो औरतें गवाही देंगी तो एक मर्द की गवाही के बराबर भी, कितना जुल्म इस्लाम ने औरत के साथ किया है और औरत बेचारी इस तरह, ऐसे इस्लाम को हम नहीं मानते। नहीं, छोटे छोटे बच्चों के जहनों के अंदर किस तरह की बातें डाल के, और ऐसे इस्लाम के कवानीन को हम नहीं आने देंगे और ऐसी शरीयत को तो हम नहीं लागू होने देंगे और इस तरह की बहुत सारी बातें। तो अगर इसके पीछे देखा जाए ना, तो अल्लाह ताला ने औरत के साथ बहुत ही खैर का मामला किया। सबसे पहले तो एक बात आपको बता दूं, किसी गैर मुस्लिम ने इस कुरान को पढ़ा तो उसने कहा था कि अगर मुझे ये ना पता हो कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो यही समझते ना इन्होंने लिखा हुआ, तो अगर मुझे ये ना पता हो कि इनका लिखा हुआ ये कुरान है तो मैं ये समझता कि ये शायद किसी औरत ने लिखा, क्योंकि इसमें इतने औरतों के हकूक के ऊपर बात है। अब औरतों ने बात तो कोई पढ़ी होती नहीं, कोई कुरान को समझा नहीं, हिकमतें से नहीं समझी, बस एक बात मिल गई कि औरत की गवाही आदी है और उसके ऊपर ही रोना पीटना मचा दिया। इसी से पता चलता है कि औरत की अकल का हाल क्या है। ये देखें, अल्लाह ताला ने, याद रखें, हर एक की जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो उसका फील्ड है जिसमें उसको अमल करना है, अल्लाह ताला ने उसी के मुताबिक उसके अंदर क्वालिटीज रखी। इसको ऐसे समझे, मसलन शेर है ना, उसने गोश्त खाना है, उसने शिकार करना है, तो अल्लाह ताला ने उसको कैसी जिसामत दी है, वैसी दी है ना। अब एक हिरन है, उसने घास खानी है, उसको इतने बड़े दांत नहीं चाहिए, उसको ऐसे पंजे नहीं चाहिए, उसको ऐसी वो जिसामत नहीं चाहिए, वो उसको अल्लाह ताला ने वैसी दी है। अच्छा, हर एक चीज को आप देखें, जो उसका फील्ड है ना, जिसमें उसने अमल करना है, जो उसने काम करना है, उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने उसमें क्वालिटीज रखी। औरत का फील्ड ऑफ वर्क कह लें या अमल कह लें या उसका काम कह लें, वो घर की जिंदगी है, मर्द का फील्ड है बाहर की जिंदगी। अब औरत के ऊपर अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारियां डाली, उसमें जैसे बच्चा का पैदा करना, उसकी परवरिश करना, उसको दूध पिलाना, घर की देखभाल, घर का सारे काम, अल्लाह ताला ने फिर उसको क्वालिटीज भी वैसी दी, उसके अंदर ममता डाल दी। अब वो औरत जो है, इसी वजह से अल्लाह ताला ने उसको वो क्वालिटीज दे दी जो एक माँ बनने के लिए जरूरी थी। मिसाल के तौर पे भूल जाना, निसियान औरत के साथ ज्यादा लगी। और क्यों? इसलिए कि देखें, औरत के मामलात ऐसे हैं कि अगर उसके अंदर भूल ना होती ना, तो वो एक बच्चा पैदा करके कभी दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए ना जाती। ऐसा ही है ना, अगर उसको याद रहती वो सारी पेन जिससे वो गो थ्रू हुई है ना पहले बच्चे में, तो कोई औरत दूसरा ना पैदा करती, मगर वो भूल जाती है। इसी तरह औरत के, जाहिर है, घर की जिम्मेदारियां उठाने में, घरेलू मसरूफियात में, बच्चे के साथ जो मुशक्कत है वो उठाने में भी, जो उसको तकलीफ से गुजरना पड़ता है वो भी सारी भूल जाती, इसीलिए दूसरा बच्चा पैदा करती। फिर इसी तरह जो फिजिकल उसको पेन होती है या उसकी जो फिजीक के अंदर चेंजेस आती हैं, जो उसको वीकनेस होती है, वो भूल जाती है। इसी तरह मर्द को अल्लाह ताला ने कवाम बनाया, एक दर्जा उसके ऊपर दिया, तो घर में जो मामलात होती हैं उनमें फाइनल फाइनल जो अथॉरिटी होती है वो मर्द की होती है। औरत कन्विंस उसको कर सकती है, लेकिन अगर नहीं कन्विंस कर पाती तो लास्ट वर्ड किसका होता है? मर्द का होता है। अब अगर औरत में निस्यान ना हो ना, तो वो तो इसी बात के ऊपर रोती पीटती रहे। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ये एक रहमत रखी औरत के लिए कि वो भूल जाती है बातों को, और जल्दी भूल जाती है, और ये उसके फायदे में है क्योंकि यही उसको जरूरत है इस चीज की। ठीक है, निस्यान भी ना बाज दफा इंसान के लिए बड़ी फायदेमंद चीज है। ऐसा अगर अल्लाह ताला निस्यान ना रखते ना, भूल ना रखते,
तो जो इंसान की जिंदगी में कई गम आते हैं, कई मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो इंसान उनको, जैसे मसलन कोई फौत हो जाता है, उसका सदमा जो होता है, जो जितना पहले दिन होता है उतना 2 साल बाद नहीं होता। अगर उतना ही रहे तो कोई बंदा जिंदा ही ना रह सके। तो भूल कोई बुरी चीज नहीं है, कहने का मकसद यह है कि हाय हाय ये बेचारी, इसको तो भूल के अंदर डाल दी। नहीं, बल्कि इन अ सेंस, बाज दफा कभी मैं किसी जगह ताजियत के लिए जाती हूँ तो लोग कहते हैं हाय काश हमें ये दिन इसी तरह याद रहे, हमेशा ऐसे ही याद रहे, हम इसी कैफियत के अंदर रहे तो कितना अच्छा। मैं कहती हूँ खुदा की बंदियों, ये तो अल्लाह की रहमत है कि वो भुला देता है। आप तो जिंदगी गुजारने के काबिल ही ना रहे अगर आप इसी तरह रहे जिस तरह आप पहले दिन। ये अल्लाह की रहमत है। तो अल्लाह ताला ने औरत के लिए ये सारे जो जो बच्चा की पैदाइश और घरेलू जो मसले मसाइल ये होते हैं, इनमें जो सदमा बर्दाश्त करने की कुव्वत है ना, वो इस तरह से पैदा की कि उसको भुला देता है, उसका एहसास कम हो जाता है। तो एक तो उसके अंदर भूल है औरत के अंदर, दूसरी ये हम सब औरतें जानती हैं कि मर्द से ज्यादा औरतें इमोशनल होती हैं। वो भी क्यों, अल्लाह ताला ने वो भी क्यों डाला औरत में? अगर औरत इमोशनल ना हो तो बच्चे ही नहीं परवरिश कर सकती। इमोशन जरूरी है उसके लिए, इसीलिए तो बच्चा जरा सी तकलीफ उसको होती है तो औरत का फौरन दिल भर जाता है, वो उसके लिए तकलीफ महसूस करती है, उसको जल्दी उसके ऊपर रहम आ जाता है। आपने देखा नहीं है, हम जरा सी खबर सुने तो हमारा दिल इतना उदास हो जाता है, आंसू टप टप गिरने लगते हैं। वही मर्द बैठा होता है, उनको कुछ नहीं होता। तो अगर औरत के अंदर ये चीज ना होती तो बच्चा भूख से तड़प रहा है तो उसको एहसास ही ना होता। बच्चा रोने लगा हुआ, वो कहती मेरे सर में दर्द हो रहा है, फेंको उसको उधर। आप देखेंगे कभी मर्द जब आते हैं काम वगैरह से तो वो कहेंगे बच्चा एक दफा रोएगा, चुप करो चुप करो चुप करो, उसके बाद वो कहेंगे ले जाओ उसको यहां से। औरत कभी नहीं कहेगी ले जाओ उसको यहां से। तो औरत में अल्लाह तआला ने रहम का जो जज्बा है, तड़प जाने का, किसी का किसी की तकलीफ सुन के बेचैन हो जाने का, ये जज्बा बहुत ज्यादा रखा है, क्योंकि ये उसकी नीड है। मर्द की निस्बत ज्यादा है, मर्द सह जाते, औरत इमोशनल होती है। फिर मर्द में इंटेलेक्ट ज्यादा होता है, वो ठंडे दिल और दिमाग से फैसला कर सकता है। औरत में चूंकि इमोशन ज्यादा है, वो इमोशनल फैसले ज्यादा करती है। इमोशंस जिसमें होते हैं, जल्दी से किसी के ऊपर तरस आ जाता है, कोई जरा सा रो के दिखा दे तो उसके ऊपर रहम आ जाएगा कोई, तो उस वो फिर जो इमोशंस के साथ फैसले होते हैं ना, वो सही फैसले नहीं होते। इसी तरह आप सारी औरतें ये जानती हैं, एक्सेप्शनल केसेस तो हर जगह होते हैं, लेकिन किसी औरत से भी पूछे ना, वो कहती है हिसाब किताब में हम बड़े कमजोर हैं, मेरे से हिसाब किताब ना किया कराया करें, मैथ ना मेरे से कराया करें। इस तरह एक इकोनॉमिक्स और ये ठीक है, औरतें इस फील्ड में भी गई हैं, लेकिन कम। ज्यादातर औरतों को क्या है इंटरेस्ट, घर घर को सजाना संवारना, बच्चों की टेक केयर, शॉपिंग, खुद को बनाना संवारना, ये चीजें हैं ना। कितनी औरतें जिनको ये है कि आजकल क्या स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स किधर करनी चाहिए, इकोनॉमी का क्या हाल हो रहा है, पता है मर्द के लिए, मर्द उस चीज में। तो माली मामलात में अगर आप देखेंगे ना, औरत उसमें कमजोर होती है, मर्द उसमें तेज होते हैं, एक नेचुरली बात ऐसी होती है। फिर मर्द के अंदर जुर्रत, हौसला, दलेरी ज्यादा होती है। देखिए औरत को ना, औरत की सिफत ही क्या है, उसको क्या कहते हैं, सिंफे नाजुक ना, नजाकत है इसके अंदर, और यही उसकी ब्यूटी है। और मर्द की जो क्वालिटी है वो क्या है, बहादुरी, जुर्रत, हौसला। ये बातें सारी नोट करें, ये जो सारे मैं आपको पॉइंट्स बता रही ना, फिर मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगी इंशाल्लाह। तो ये चीज है, क्या औरत में ये चीजें नहीं होती, उसको डराया धमकाया जाए जरा सा तो भी वो एकदम परेशान हो जाती है। उसके साथ बहस की जाए औरत के साथ तो क्या करती है, रोने लगती है या फिर कोसना शुरू हो जाएगी, दूसरे को घबरा जाती है। मर्द के साथ बहस की जाए वो खड़ा रहता है। औरत फिजिकली भी मर्द से कमजोर है, और आप देखें जब पीरियड्स होते हैं या जब प्रेगनेंसीज होती है तो फिर तो बिल्कुल ही कमजोरी आ जाती है उसके, इमोशन भी ज्यादा हो जाते हैं। कोई बात नहीं भी होगी तो रोना आ रहा है,
बगैर बाप के रोती जाए,
ऐसा है ना।
तो अल्लाह ताला ने ये रहमत की औरत के ऊपर कि उसको ये चीजों के अंदर नहीं डाला,